Om Shanti. Good morning. कुछ समय से शायद 2 सप्ताह हो गए होंगे बाबा की अच्छी शक्तिशाली साकार मुरलियां सुन रहे हैं जिसमें बाबा बहुत प्रेम से हर प्रकार की सावधानी बताते बाबा चाहते हैं कि बच्चे जल्दी आगे बढ़े और जो कुछ भी कमी है बाबा स्पष्ट बताते हैं कि उसका नतीजा क्या है और उसको किस तरह से परिवर्तन करना चाहिए तो आज की मुरली भी इसी प्रकार से है सेवा की भी बातें बाबा बताते परंतु मुख्य तो बाबा बच्चों को बिल्कुल संपन्न बनाने के लिए बहुत कई बातें स्पष्ट करते हैं ये है 21 तारीख की अप्रैल मास की मुरली मीठे बच्चे बाप आया है तुम्हें करंट देने तुम देही अभिमानी होंगे बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेंगी प्रश्न सबसे बड़ा आश्रय स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए उत्तर अशांति फैलाना यह है सबसे बड़ा आश्रय स्वभाव अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं वे जहां जाएंगे वहां अशांति फैला देंगे इसीलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं और गीत है ये कहानी है दीवे और तूफान की ओम शांति मीठे मीठे सिक्की लती बच्चों ने गीत की लाइन सुनी गीत तो भक्ति मार्ग का है फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफर किया जाता है और कोई ट्रांसफर कर न सके तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकती हैं दीवा क्या है तूफान क्या है बच्चे जानते हैं आत्मा की ज्योत उजाई हुई है अब बाप आए हैं ज्योत जगाने लिए कोई मरती है तो भी दीवा जलाते हैं उसमें बड़ी खबरदारी रखते हैं बिल्कुल रियलिटी समझते हैं कि यदि तेल खत्म हो गया कुछ ऐसे हवा लग गई तो आत्मा के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा तो बाबा कहते समझते हैं दीवा अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधेरे में जाना पड़ेगा इसीलिए दीवा जलाते हैं अब ये बातें सुनते हैं तो सोचते हैं कि कैसे लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं और आजकल इसी कारण से देखते हैं कि भारत के जो नौजवानों की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, वो लोग तो बिल्कुल उन बातों को स्वीकार नहीं करते, तो उनको ज्ञान की रोशनी दे करके उनको राइट ट्रैक पर लाना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि भक्ति भी नहीं ज्ञान भी नहीं तो बाकी तो अंधेरा ही है। तो आत्मा को अंधेरे में जाना पड़ेगा, इसीलिए दीवा जलाते हैं। अब सत्युग में तो ये बातें होती ही नहीं, वहां तो सोजरे में होंगे, भूख आदि की बात ही नहीं, वहां तो बड़े माल मिलते हैं, यहां तो हम तो एक प्यार की रीत रस्म से भगवान को भोग लगाते और मालूम है कि वो खुशबू वो आत्मा तक भी पहुंचती, परंतु भक्ति में कौन कैसे विश्वास से लगाते हैं, क्या ब्राह्मण की स्थिति है, वो तो बिल्कुल अलग ही बात। दादियां बहुत प्यार से भोग लगाती थी, बाबा को भी भोग लगाना बहुत शुद्धि से बहुत प्यार से, परंतु साथ साथ जब कोई आत्मा के लिए लगाते तो भी बहुत ही भावना से बहुत ही श्रद्धा से लगाती थी। वो तो मालूम था उस आत्मा तक पहुंच रहा है, भक्ति में तो मालूम ही नहीं। यहां है घोर अंधियारा, छीछी दुनिया है ना, सब आत्माओं की ज्योत उजाई हुई है, सबसे जास्ती ज्योत तुम्हारी उजाई हुई है, खास इसके लिए भगवान आते हैं धरती पर, बाबा याद ला रहे हैं, खास तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं, तुम्हारी ज्योत उजाई गई है, अब करंट कहां से मिले, बच्चे जानते हैं करंट तो बाप से ही मिलेंगी, करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज होती है, तो अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से, भगवान साजन भी है प्यारा इतना है और बड़ी मशीन भी भगवान के पास है। देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए, जरूर इतनी बड़ी मशीन होंगी, और ये है बेहद की बात। सारे दुनिया की आत्माओं की ज्योत बुझाई हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाप समझाते हैं, अनेक बातें बाबा याद दिलाते, परंतु एक मूल बात बुद्धि योग बाप से लगाओ, देही अभिमानी बनो। कितना बड़ा बाप है, सारे दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है सबकी ज्योति जगाने, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योति जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे ज्योत जगाते हैं, ये तो कोई नहीं जानती। उनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, फिर एक तरफ ज्योति स्वरूप, फिर सर्वव्यापी भी कह देते। ज्योति स्वरूप को बुलाते क्योंकि ज्योति बुझ गई है, साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का, दिखलाते हैं। अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूं, बहुत करंट है। तो इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो, क्या लिखा हुआ है, किसने क्या बोला, सब बातें अभी समझ में आती। सबको समझाना भी ये है कि तुम आत्मा हो। आत्माएं ऊपर से यहां आती है, पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतो प्रधान है, गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। जब अपवित्र बनते हैं तब गॉड फादर को बुलाते हैं कि आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। बाबा फिर भी एक्सप्लेन करते हैं, लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। भक्ति में तो सब कुछ इकट्ठा इकट्ठा कह देते, परंतु अलग है ये तो मालूम ही नहीं। जरूर कोई से पतित बने हैं तब कहते हैं बाबा आओ, आकर लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ, यहां से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया है यहां तो शांति रह नहीं सकती, शांति तो है ही शांति धाम में, सत्युग में एक धर्म एक राज्य है तो शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं। यहां मनुष्य तंग होते हैं अशांति से, एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है, समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो कहां तक अशांति फैलती, मां बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहां जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आश्रित स्वभाव है ना। अभी तुम जानते हो सत्युग है सुखधाम, वहां सुख और शांति दोनों है, और वहां परम धाम में तो सिर्फ शांति है। उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए ना तो बाप को याद करो। मुक्ति वालों के लिए तो बहुत इजी है ज्ञान समझना समझाना। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है, जो बाद में भी आने वाले हैं उनके लिए भी बाबा कह रहे हैं, पहले जीवन मुक्त होते हैं फिर जीवन बंध में आते हैं। आधा आधा है ना। अभी तक भी जो लोग कहते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, उनका अभी तक वही स्टेज चल रही है जीवन मुक्ति की, परंतु थोड़े समय के अंदर ही जीवन बंध। सत्तो प्रधान से सत्तो रज्जो तमो में जरूर आना है, तो जीवन मुक्ति आधा और जीवन बंध आधा। बिचारी में जो एक आधा जन्म लिए आते होंगे वो क्या सुख दुख का अनुभव करते होंगे, सुख भी थोड़ा चलो दुख भी थोड़ा, तुम तो सारा अनुभव करते हो। तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं फिर इतने जन्म दुख में होते हैं, फलाने फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते, उनका पार्ट ही बाद में है, भल नया खंड है उनके लिए, जैसे कि वो ही नई दुनिया है। जैसे बोधी खंड क्रिश्चियन खंड नया बना हुआ है, उनको भी सत्तो रजो तमो से पास करना है। झार में भी ऐसे होता है ना, आस्ते आस्ते वृद्धि होती जाती है। पहले जो निकले वो नीचे ही रहते हैं, देखा है ना नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं, आज नीचे से ऊपर आते, बिल्कुल कई पेड़ों में लगता था कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही मुलायम, बहुत हल्का हल्का हरियाली का रंग था, तो नए नए पत्ते बाहरी मौसम में निकलते रहते, छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते, फिर गुर फूल निकलता, नया झार वो छोटा है, नया बीज डाला जाता, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ जाता है। तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो सड़ जाते हैं, एक तरफ प्रकृति की बात, दूसरी तरफ आत्माओं की बात। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर उसमें नंबरवार बनते हैं, राजधानी स्थापन होती है, बहुत फेल हो पड़ते हैं, बाबा अपनी तरफ से उमंग उत्साह भरते हैं, हर बात समझाती हैं, फिर राजधानी स्थापन हो रही है, नंबरवार पुरुषार्थ सब कुछ चल रहा, प्यार का लेने का आधार क्या है, बाबा से हमें प्यार मिले किस आधार पर। बाबा कहते हैं बच्चों की जैसे अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है, कोई कोई लिखते हुए हैं बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको हाथ कौन लगाएगा, वे बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते, पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। पहले एक एक से पूरा समाचार पूछ पोता मेल लेते हैं, जैसी अवस्था वैसा प्यार। बाहर से भाव प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं ये तो बिल्कुल ही बुद्धू है, सर्विस कर नहीं सकते, ख्याल तो रहता है ना, अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत प्रेम से मिलेगा, कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी इतना प्यार नहीं रहता। तो यहां भी ऐसे हैं बच्चे, बाहर में भी सर्विस करते हैं ना, भल कोई भी धर्म वाला हो उनको समझाना चाहिए, बाप को लिबरेटर कहा जाता है ना, लिबरेटर और गाइड कौन है उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉड फादर आते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, प्योरिटी तो है नहीं, अब मुझे याद करो। बाप तो एवर प्योर है, बाकी सब पवित्र से अपवित्र जरूर बनते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आते हैं। इस समय सबकी वही हालत, इस समय सब पतित है, इसीलिए बाप राय देती हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। और दूसरी वार्निंग बाबा क्या देते, एक तो पावन बनने के लिए बाबा अंडरलाइन कर रहे हैं, और दूसरी बात अब मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अब अंत है, माया का पौंड कितना है। इसलिए मनुष्य समझते हैं ये तो स्वर्ग है, एरोप्लेन बिजलियां आदि क्या क्या है, वह सब माया का पंप। ये अब खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएंगी। ये बिजलियां आदि सब स्वर्ग में तो होते हैं, अब ये सब स्वर्ग में कैसे आएंगे? जरूर जानकारी वाला चाहिए। कुछ दिनों से बाबा के स्वर्ग के नजारे के लिए भी इंजीनियर्स होंगे, किस प्रकार के कलाएं वाले होंगे, बाबा उन सब आत्माओं का भी आह्वान कर रहे हैं। अब ये सब स्वर्ग में कैसे आएंगे जरूर जानकारी वाला चाहिए ना? तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगरी लोग भी आएंगे, वो राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे, इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। ये फैशन सारा बाहर विलायत से आता जाता है, तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। बाप को याद करो, तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा का संदेश विश्व में पहुंचता गया है, परंतु बाबा के बच्चों के लिए भी बाबा यही सावधानी देती हैं, योग पर अधिक ध्यान रहे। तो एक तरफ बाबा कहते हैं कि योग में रहने का भी पुरुषार्थ बहुत करना है, और इसी में ही माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो, ये तो अच्छी बात है ना? क्राइस्ट भी उनकी रचना है, रचयिता सुप्रीम सोल तो एक है, बाकी सब है रचना। वर्षा रचता से ही मिलता है, ऐसे ऐसे अच्छी पॉइंट्स जो है वो नोट करनी चाहिए। बाप का मुख्य कर्तव्य है, सारे विश्व के संबंध का कर्तव्य भगवान का एक ही है, जबकि भगवान है ही रहम दिल प्यार का सागर। तो बाबा कहते हैं मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना, वो सुख धाम और शांति धाम का गेट खोलते हैं। उन्हें कहते हैं हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांति धाम सुख धाम ले चलो। जब यहां सुख धाम है तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती है। हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं, एक गेट खोलता है नई दुनिया का, दूसरा शांति धाम का। अब जो आत्माएं अब पवित्र हो गई है उनको बाप श्रीमत देती है, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, परंतु एक एक धर्म में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो तो समय पर काम आ सकती है। बोलो, शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे, आप किसी को बोलो कि बैठो मैं आपको भगवान का ऑक्यूपेशन बताती हूं, उनका क्या रिस्पॉन्स होगा? मनुष्य कहेंगे ये फिर कौन है जो गॉडफादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं। बोलो, तुम आत्मा के रूप में तो सब ब्रदर्स हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो भाई बहन होते हैं। गॉड फादर जिसको लिबरेटर गाइड कहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन हम आपको बतलाते हैं। जरूर हमको गॉड फादर ने बताया है तब आपको बताते हैं। सन शोज फादर, ये भी समझाना चाहिए, आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है, इन आंखों से उनको देखा नहीं जाता है, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है, बिंदी है, देखने से फायदा थोड़ी हो सकता है, बाप भी ऐसी ही बिंदी है, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल एक जैसी ही है परंतु वो सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर और गाइड है, है बिंदु, है बिल्कुल आत्मा के समान, परंतु कितने गुणों का बाबा ने वर्णन किया, उनकी बहुत महिमा करनी पड़ी। जरूर बाप आएंगे तब तो साथ ले जाएंगे ना, आकर नॉलेज देंगे। बाप ही बतलाते हैं आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना ही हूं। नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश कर देंगे ना, आत्मा के बाजू में आकर बैठूंगा। बाबा अपना परिचय बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आज भिन्न भिन्न प्रकार से दे रहे। मैं, मेरे में पावर है, ऑर्गन्स मिल गए तो मैं धनी बन गया। भगवान कैसे आते हैं, कैसे टेक ओवर करते हैं, धनी बन जाते हैं। बाबा की जो अंदर शिव बाबा के साथ वार्तालाप चलती, हमको सुनने का मौका बनता। इन ऑर्गन्स द्वारा वैद्य समझाता हूं, इनको एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला पहला आदमी, मनुष्यों का सिजरा है ना, ये माता पिता भी बनते हैं, उनसे फिर रचना होती है। है पुराना परंतु अडॉप्ट किया है। नहीं तो ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए? किसने सोचा भी नहीं होगा कि हम ये प्रश्न पूछे कि ब्रह्मा का बाप कौन होता। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये किसकी रचना तो होंगे ना, रचयिता तो एक ही है, बाप ने तो इनको अडॉप्ट किया है। ये इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाए तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी नॉलेज है। आज तो यूट्यूब में कई छोटे बच्चों का चित्र वीडियो वगैरह आता रहता। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है उन्हें उसकी तुरंत निशानी, उन्हें बहुत खुशी रहेंगी। वो खुशी से प्यार से मुरली सुन रहे हैं तो पता चलता है कि हाँ, ध्यान भी है और आत्म स्मृति भी है, बाबा की याद भी है। और बाबा फिर दूसरी निशानी बताते तो उनों पे तो कभी उबासी नहीं आएंगी। कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। मुरली के समय की भी बात है और आप किसी को कोर्स कराओ उस समय की भी बात है, दोनों बातें। यहां तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। क्यों? कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती। बाबा की याद में, उपस्थिति में ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा के रतन झोली में भरती जा रही है, तो कितनी कमाई हो रही है। यहां तो तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए, कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती। ग्राहक नहीं होगा, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी। यहां भी धारणा नहीं होती। कोई तो तुमको समझती नहीं है क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी हो बैठ नहीं सकेंगे। कोई न कोई बाहर की बातें याद आ जाएंगी, पॉइंट्स अच्छी भी नोट नहीं कर सकेंगे। श्रूद बुद्धि होंगे तो नोट करेंगे, ये पॉइंट बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स की चलन से टीचर को देखने में तो आता है ना, सेंसिबल टीचर की नजर सब तरफ फिरती रहती है, तब तो सर्टिफिकेट देती है पढ़ाई का, मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं, कितना एब्सेंट रहा वो भी निकालते हैं। यहां तो बहुत प्रेजेंट का सर्टिफिकेट निकालते हैं, प्रेजेंट होते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं, धारणा नहीं होती। कोई कहते हैं बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या कहेंगे? बाबा क्या करेंगे? ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। कुछ ऐसे कर्म किए हैं चाहे पूर्व के चाहे इस जन्म के, जो बिल्कुल हर बात में वो रुकावट बन जाती है। बाप तो तदबीर एक ही कराते हैं, तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे? स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं, और ये है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे। नेशन नेशनैलिटी देख समझाना पड़ता है। पहले पहले ऊंचते ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता है, वो कैसे लिबरेटर और गाइड है। हेवन में ये विकार होते ही नहीं। इस समय इनको कहा जाता है, बाबा स्ट्रॉन्ग भाषा यूज करते हैं आज के समय के लिए, तभी बाबा का कहना है कि ये तो शैतानी राज्य है, पुरानी दुनिया है ना। इनको गोल्डन एजेड नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी, अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है तो पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसीलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि न आए, बुद्धि योग इधर उधर न भटके। पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। दूसरा, पवित्र वन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है, सर्विस में होशियार बनना है, अच्छी कमाई करनी और करानी है। मुरली का धारणा के लिए सार। वरदान, नर जीवा जन्म की स्मृति से कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। ये नर जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। ये देह लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर कर चला रहे हैं। बाबा को कार्य कराना है और बच्चे जी हजूर हाजिर हो जाते तो फिर बाबा ही उन लोगों को शक्ति दे करके चला रहा। प्रैक्टिकल तो आप सभी ने देखा। जिम्मेवारी बाप की है न कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया कि ये कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। स्लोगन, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अव्यक्त इशारा, कन्नाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूं तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। आपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। फरिश्ता नाचेगा भी, हल्का भी, उड़ता भी रहता। जब आज मैं मुरली पढ़ रही थी तो उसमें पहले सार में ही ये था कि बाबा करंट देते हैं, तो एक सीन याद आई जब पिछले साल 68 बाबा का जो अंतिम वर्ष था साकार में, उस समय बाबा अमृत वेले योग कराने जाते थे। फिर कई बार निवे भाई की ऑफिस के सामने खड़े होकर थैले पर सब तो फॉलो कर लेते थे, तो बाबा सबको दृष्टि देख करके वहां भी कुछ न कुछ महावाक्य उच्चारण करते। कई बार सिर्फ साइलेंस में ही दृष्टि देख करके फिर कमरे में जाते। तो दादी जानकी को बहुत संकल्प था कि मुझे अमृत वेले के योग के लिए वहां जाना है मधुबन। तो जून मास में दादी का प्रोग्राम बना और दादी के साथ हम 10-12 लोग थे। उस समय तो 10-12 लोग की पार्टी भी बड़ी पार्टी लगती थी। तो हम इकट्ठे इकट्ठे आए और यहाँ नीचे ट्रेन स्टेशन पर भूरी दादी वो सबको मिलने आती थी। तो पहले ही समाचार ओम शांति तो नहीं किया, कैसे हो ये भी नहीं, तुरंत ही दादी के पास आकर के दादी को बोली आज तो बाबा ने सवेरे योग नहीं कराया। तो दादी ने कहा कि मुरली चलाई, हाँ मुरली तो चलाई परंतु योग नहीं कराया। तो नॉर्मली हम ऊपर आते थे तो पहले फ्रेश होकर के फिर बाबा के पास जाते थे। इस समय तो दादी को मन में इतनी उत्कंठा थी, जो दादी तुरंत ही बाबा के कमरे में गई, हम भी पीछे पीछे गए। तो दादी बाबा को कहती है, बाबा दादी भी ओम शांति कैसे है बाबा, कुछ नहीं, तुरंत बाबा आप अभी दृष्टि नहीं देंगे अमृत वेले में? तो बाबा उसको बड़े प्यार से धीरज से दृष्टि देता, फिर कहता बच्ची बाबा को, बाबा तो तुमको हर रोज दृष्टि देता था, तुमको वहां अनुभव नहीं था? तो दादी को लज्जा आ गई। तो दादी कहे सॉरी बाबा, हाँ जी बाबा, बाबा की दृष्टि मुझे वहां भी पहुंचती थी। और उन्हीं दिनों में मैं क्लास में जाती थी तो दादी हर रोज का अनुभव सुनाती थी कि आज बाबा ने दृष्टि जो दी किस प्रकार से उसको अनुभव रहा। परंतु ये समाचार सुनकर दादी बिल्कुल शॉक लग गया दादी को। तो फिर बाबा ने कहा बाबा तो आपको सदा दृष्टि देते ही रहेंगे। तो बस फिर शांति हो गई। फिर तो और बाकी कारोबार चला था, परंतु रियलिटी तो दादी को बाद में पता चला कि डॉक्टर ने कहा था कि अमृत के लिए योग कराना, फिर साथ में मुरली सुनाना। और बाबा तो मुरली क्लास में 6:30 बजे आते थे, ये बाद में 7 बजे का टाइम शुरू हुआ, उस समय 6:30 बजे। तो डॉक्टर ने बाबा को कहा कि आप दोनों नहीं करो, आप ये डिसाइड करो कि आपको अमृत वेले का योग कराना है या तो आप मुरली सुनाओ, दोनों में से एक आप करो, नहीं तो आपके हार्ट पर स्ट्रेन आ रही है तो आपको संभालना होगा। तो फिर बाबा ने सोचा कि दृष्टि से बाबा सब तरफ पहुंच जाते, परंतु मुरली तो बच्चों को नहीं मिलती है तो उनको बहुत मिसिंग फीलिंग आती। तो बाबा ने फिर उसी दिन ही शुरू किया था जब हम पहुंचे थे जून मास में। तो बाबा की दृष्टि जो देही अभिमानी बच्चे हैं उनको तो करंट मिल ही जाती और वो अनुभव भी होता कि बाबा आज विशेष करंट दे रहा। तो मुरली बहुत ही सुंदर, क्यों? क्योंकि जैसे बाबा ने बताया कि बाबा का मुख्य काम है सबको दुख से लिबरेट करना। तो बाबा ज्ञान भी बताते, योग का ड्रिल भी कराते, ताकि सब दुख के जो भी घड़ियां हैं पास्ट हो जाए, फिनिश हो जाए, और आत्मा फिर कभी भी उस दुख की महसूसता में नहीं रहे। क्योंकि उस दुख को हम अपने अंदर समा के रखेंगे तो हमारे मुख से कुछ न कुछ कड़वाए बोल निकलते ही रहेंगे, परंतु अंदर स्वच्छ है, साफ है, बाबा का प्यार, बाबा का सुख का अनुभव है तो बोल भी ऐसे ही निकलते रहेंगे। बाकी शशि बहन जी ने कहा है कि कुछ समाचार भी बताएं। 71 में लंदन का सेंटर शुरू हुआ, फिर 72 में कुछ मास के बाद हांगकांग का सेंटर शुरू हुआ। फिर तो बीच में थोड़ी शांति थी क्योंकि वो तो पहले डेलीगेशन के आने से ये दोनों सेंटर्स खुले। और फिर नेक्स्ट जब दादी जान के आकर के पहुंची तो 74 में तो दादी की मेहनत चलती रही, अनेक आत्माओं ने ज्ञान लिया। 75 से लेके दिसंबर मास से गयाना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, बहुत सारे सेंटर्स खुलते रहे खुलते रहे। तो अभी 75 से अभी तो पहले ऑस्ट्रेलिया का 50 इयर्स का प्रोग्राम, अभी फिर नवंबर मास में गयाना का प्रोग्राम, अभी आप सुनते ही रहेंगे गोल्डन जुबली सब मना रहे हैं। यूरोप के कई सेंटर्स पर खोलते गए, अमेरिका का भी बाद में खुला। तो इनकी गोल्डन जुबली मनाने का एक वर्ष से अधिक मैं समझती तैयारियां चलती रही, तो मेलबर्न में होता है एक का काम, बाबा का काम, और एक आत्मा ऐसी निकलती जो फिर बाबा के साथ सहयोग दे करके फिर करण करावनहार बहुत कुछ करा लेता। तो एक वो लगती बिल्कुल छोटी सी है कलविंदर, तो उसको काल के सब कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सबके नाम को शॉर्ट बना लेते हैं, तो काल उसको कहते हैं। एनीवे, तो ये कलविंदर बहन सिख बैकग्राउंड की है और लिया ज्ञान लंदन में, लफ्टरो में यूके, फिर गई ऑस्ट्रेलिया, उनका पहले से ही तैयारी बनी हुई थी। तभी वो बिल्कुल टॉप लेवल का प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की। अजब की बात है, लगती इतनी छोटी है, और हमको अपने ऑफिस में पिछले समय लेके गई थी, तो बहुत बड़ी सुंदर ऑफिस, सारे मेलबर्न शहर का नक्शा सामने आता। तो उस एक बहन ने कहीं की बहुत हाई लेवल क्वालिटी आत्माओं की सेवाएं की है। कुछ समय से, एक दिन में नहीं होता, कुछ समय से उनकी पालना करती रही है, कहीं तो दिल्ली तक पहुंचे, कहीं तो आबू तक पहुंचे। तो अभी उन्होंने 50 इयर्स के हिसाब से जो पार्लियामेंट का स्टेट स्टेट का गवर्नमेंट हाउस है, तो उसमें एक खास क्वींस रूम आती, तो उसमें उन्होंने गवर्नर ने बुलाया था, और उनके निमंत्रण से, ब्रह्म कुमारीज के निमंत्रण से भी 100 लोग इकट्ठे हुए थे, सब उस लेवल के। तो गवर्नर के साथ तो उसकी जो स्टाफ भी आती है, वो बहन है, तो उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा, परंतु और भी एमपी वगैरह थे। तो उसमें मिस्र ब्रह्म कुमारीज, मतलब ब्रह्म कुमारीज कई और संस्थाओं से मिल करके शांति का कार्य करने के लिए, कैसे शांति आ सके, उसमें पीस बिल्डिंग नाम से उन्होंने प्रोग्राम कब से चालू रखा था, तो उसमें प्रोग्राम रहा। तो आप सोच सकते हैं, गवर्नर से एक तो मुलाकात अकेले है वो ही बड़ी बात होती, परंतु स्टेट हाउस में फिर उसने प्रोग्राम जो रखा वो भी बहुत ही शानदार, और फिर उन्होंने पब्लिक प्रोग्राम भी जो रखा, उसमें एक मुख्य टीचर है मेडिटेशन का, जो बहुत जल्दी में जब मेडिटेशन पूरा विश्व में फैलता गया, तो उन्हीं दिनों में उसने, वो मुख्य टीचर माना जाता है मेडिटेशन का, वो आबू में भी आया है। तो उसके साथ हमारा कॉन्वर्सेशन था, और एक जर्नलिस्ट बहन हम दोनों के साथ बातचीत करती रही, तो वो भी बहुत ही सुंदर शानदार प्रोग्राम, फुल हाउस। और तो वो बाकी तो बातें चलती रहती, परंतु ये दो मुख्य, और सिडनी में भी दो मुख्य प्रोग्राम, एक तो सिडनी का ओपरा हाउस, आप लोगों ने चित्र उसका कई बार देखा होगा, सागर के कंठे पर ही वो है हार्बर में, और गेदी का प्रोग्राम उन्होंने उसी जगह पर 1981 में रखा था, परंतु मेन हॉल में नहीं, एक और 300 का 400 का हॉल था उसमें। और मैं न्यूयॉर्क लंदन से होते आके बॉम्बे में पहुंची थी, शाम को दीदी बड़ी ठीक और सब पैकिंग हो गई थी, लच्छू दादी हमारे साथ आने वाली थी दीदी के साथ, तो रात्रि को दीदी की तबीयत बिगड़ गई, तो तशील दादी कहे, और उस समय रमेश भाई की जो बहन थी वो डॉक्टर थी, तो वो बिल्कुल घरेलू डॉक्टर थी, तो वो भी आई, तो वो भी कहे कि दीदी ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगी कल सवेरे। तो मैंने शील दादी को कहा कि आप बाबा के पास जाओ, आप पूछ के आओ क्या करें। तो शील दादी कहे, नहीं, मेरा बहुत समीपता का संबंध है दीदी के साथ, तो मैं बाबा के पास ये संदेश नहीं लेके जाएंगी। मैंने कहा, अभी कौन करेगा, क्या करेगा? तो उसने कहा, दादी गुलजार को हम फोन करती हैं। तो दादी गुलजार का तुरंत फोन लग गया, दादी गुलजार उस समय दिल्ली में थी, तो दादी गुलजार से बातचीत की, तो दादी कहे, ठीक है, मैं बाबा से पूछ के आती हूं। तो 15-20 मिनट के अंदर ही दादी गुलजार का फोन आया तो दादी गुलजार कहे कि बाबा का संदेश है कि जयंती बची जाए। मैंने कहा कि वो तो मैं जाएंगी पर तो कौन मेरे साथ चलेगा, तो दादी क्या कहती, बाबा तुम्हारे साथ चलेगा। मीन्स दादी कुमार का को दादी बाबा छुट्टी नहीं दे रहे हैं, मधुबन से आए दीदी के प्रोग्राम के लिए, वहां से न्यूयॉर्क में सितंबर मास था तो यूएन का कारोबार, दादी जानकी वहां बैठी है मोहिनी दीदी के पास तो वो भी नहीं आएंगे। तो उस समय फिर मैं अकेली आई बाबा के साथ, तो उस समय भी सिडनी ऑपरा हाउस में प्रोग्राम रहा। तो मैं उनसे पूछती थी जो लोकल है चार्ली आदाद, कि कोई भी पूछे दीदी क्यों नहीं आई है तो मैं उनको क्या बताऊं। तो उन्होंने कहा सीधी बात, दीदी की तबीयत ठीक नहीं, एज उस समय भी तो 70 कुछ 80 कुछ थी शायद दीदी की तबीयत आयु। तो आप मानो न अखबार वालों ने पूछा, हालांकि वो फोटो छपा हुआ था दीदी का, न वहां के जो मेहमान आए थे मुख्य मेहमान जिनके भाषण वाले थे, किसी ने भी पूछा ही नहीं। बाबा ने जैसे कि सबके बुद्धि को शांत कर दिया, नहीं तो आपके पास प्रोग्राम हो इसका फोटो छपा हुआ हो अखबार वाले इतना तो पूछेंगे ना कि वो क्यों नहीं आए। किसी ने भी नहीं पूछा, हालांकि अखबार वाले वगैरह भी आए हुए थे। अखबार वाले तो एयरपोर्ट पर ही आ गए थे, उन्होंने एक कमरा बुक किया था जिसमें फिर प्रेस का तुरंत जैसे पहुंचे तो वहां पर था। तो मैं लास्ट में वो टूर करके एडिलेड में पहुंची हूं और वहां पर दीदी का फोन आता है और दीदी कहती है कि जयंती मैं ऑस्ट्रेलिया आऊं। मैंने कहा दीदी अभी तो प्रोग्राम से सब हो गए, ऐसे हो सकता है कि आप सिंगापुर में आओ, क्योंकि आज तो मैं निकल के सिंगापुर जा रही हूं। तो दीदी ने कहा हाँ ये ठीक बात है, दीदी का भाई था सिंगापुर में उन दिनों में। तो दीदी फिर सिंगापुर पहुंची और भाई भी एयरपोर्ट पर, हम दोनों के फ्लाइट्स इकट्ठे ही पहुंचे और भाई भी दीदी को रिसीव करने के लिए आया था। आप सोचो शिव दादी ने भाई की बहुत अच्छी सेवा की थी, जब से बाबा ने बॉम्बे में भेजा तो तब से, क्योंकि नहीं तो वो तो छोटा बच्चा था, माँ छोड़ के बाबा के पास आ गए, नहीं तो मन में तो कई प्रकार के फीलिंग्स हो सकते, परंतु बाबा ने उन्हों को भी ठीक कर दिया और शील दादी ने बहुत अच्छी पालना भी दी, तो वो भी बहुत समीप था तो वो आया। फिर दीदी मेरे साथ सिंगापुर और जापान चली, तो ऑस्ट्रेलिया तो दीदी का मिस हो गया। तो इतने वर्षों के बाद उन्होंने फिर हिम्मत रखी कि 50 वर्ष के प्रोग्राम के हिसाब से हमको सिडनी ऑपरा हाउस में करना है, जो मेन है हॉल वहां पर। तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम और बिल्कुल हर बात इतनी प्रोफेशनल, इतनी एक्यूरेट टाइम से, जो म्यूजिशियंस थे वो भी टॉप क्वालिटी के थे, बाकी जो और स्पीकर्स थे एक था इंडियन, अभी तो ऑस्ट्रेलियन ही है परंतु उसका बैकग्राउंड इंडियन था, परंतु वो क्रिश्चियन एक चर्च को संभालता था। तो केरला का होना या क्या इतना तो वो चांस नहीं मिला, हम तो टॉपिक पर ही बात कर रहे थे, परंतु वो नौजवानी था और वो बहुत अच्छी तरह से सब सिडनी वाले उसको जानते हैं, क्योंकि खुद भी नौजवान और खुद भी जिस तरह से बातचीत करता था, बहुत नौजवान लोग उसके पास आते और बहुत रहम भावना से बात करता था। और एक थी जो वहां की आदिवासी है एबोरिजिनल लोग उसमें से, परंतु वो थी एमपी मिनिस्टर, वो मिनिस्टर रह चुकी थी, तो उसका भी बहुत ही अनुभव युक्त, और जैसे वो कहे मैं हर रोज ध्यान रखती हूं कि एक काइंडनेस का कर्म मैं जरूर करूं। अभी आप सोचो कई ब्राह्मण है, सो हम तो बाबा के हैं सब कुछ ठीक चल रहा, ऐसे ही हम थोड़ा अवेले हो जाते, परंतु हर कर्म हमारा पुण्य कर्म हो वो तो कईयों को ध्यान रहता, परंतु हरेक को ये ध्यान रहे कि हर रोज कुछ न कुछ मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐसे कर्म करूं जिसको दूसरे को प्राप्ति हो। तो और ये माता कब से, इसने कहा कि उसकी आयु अभी तो 70 कुछ होंगी, परंतु उसका ध्यान रहा है कि मुझे इस तरह से अपने जीवन को चलाना है। मतलब वातावरण इतना सुंदर था, बहुत शक्तिशाली, और तुरंत ही जैसे ही प्रोग्राम फिनिश हुआ, फिर करीब 50 लोगों को बुलाया था एक दूसरे कमरे में, जो उनका रिसेप्शन एरिया थी, तो वहां पर तो बिल्कुल सागर सामने नजर आ रहा है, शिप्स वहां से घूम रही है, और एक और बहन जापान वाली आयोको वो वायलिन चला रही है इस तरह से, मतलब हर बात में बहुत ही सुंदर वातावरण। तो वहां पर जो उनके बहुत काल के फ्रेंड्स रहे हैं, कोई तो 50 इयर्स के संबंध वाले, कोई तो 40 इयर्स के संबंध वाले, और कुछ नए नए, तो उनका रिसेप्शन रहा तो वो भी बहुत अच्छा सुंदर रहा। और मधुबन के लिए तो 25,000 लोगों को संभालना सहज है, विदेश में तो 100 लोगों को भी संभालना इतना सहज नहीं होता। तो जो भी 4 रिट्रीट सेंटर्स है उनके पास ऑस्ट्रेलिया में, परंतु 100 सबसे बड़ा, 100 से अधिक नहीं संभाल सकते, मतलब जगह नहीं है इतनी। परंतु उन्होंने अभी एक 10 मिनट की दूरी पर अपना जो आश्रम है, रिट्रीट सेंटर, उसके 10 मिनट की दूरी पर एक होटल ले रखी थी। तो वहां पर 700 से अधिक ब्राह्मण आए हुए थे, उसमें से तो कुछ थे ब्राह्मण जो बाबा के बने थे, फिर हॉलिडे पर गए थे, और अभी इस निमंत्रण से उनको कुछ जागृति आई। ऐसे 3-4 थे जो आए थे, पहचान वाले पुराने, परंतु बाकी तो न्यूजीलैंड से भावना बहन, जापान से रजनी बहन, मेरा बहन मलेशिया से, ये आजकल उनकी टीम बनी हुई है, जो एक आत्मा डॉक्टर निर्मला संभालती थी, अभी वो आपस में 5-6 लोग है जो टोटल रीजन को संभालते हैं, तो वो सभी पहुंचे हुए थे। तो परिवार जब इकट्ठा होता तो सबको बहुत खुशी भी होती, और यज्ञ की पुरानी हिस्ट्रियां बहुत शेयर भी कर रहे थे, अनुभव भी सुना रहे थे। एक भाई जो मुझे, मैं समझती 30 साल से नहीं मिला, उसने लंदन में ज्ञान लिया था परंतु ऑस्ट्रेलियन था, तो वो आकर पहुंचा, तो खास मिलने आया, तो उसकी आंखों में पानी था। तो जैसे ही उस वातावरण में उसको जागृति आई, मधुबन की कई बातों की स्मृतियां आई, दादी जानकी के दृष्टि की, बाबा की दृष्टि की, तो वो 5 मिनट तो उसकी आंखें भर आई थी। फिर बाय चांस हम लोगों का एक अलग डाइनिंग रूम रखा था, तो वहां पर वो बैठा था भाइयों के साथ, तो बाय चांस और कोई जगह नहीं थी, तो मैं वहां ही उसके बाजू में जाकर के बैठी। कोई संकल्प नहीं था, परंतु चांस था तो जाके बैठी। तो वो तो आधा घंटा जो उसको स्मृतियां आ रही थी वही सुनाता रहे। फिर दूसरे जो भाई थे उन्होंने कहा अभी तो बहन को जाना होगा, उसको नाश्ता करने दो क्योंकि वो बात करता रहे और मैं फिर नाश्ता करूं वो भी ठीक नहीं लग रहा था। तो मतलब ऐसे बहुत टचिंग वातावरण था, और जो जिस तरह से उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, हर एक को इन्वॉल्व किया था। तो मतलब बाबा ने 50 इयर्स की सेलिब्रेशन में बाहर वालों की भी सेवा, परंतु साथ साथ ब्राह्मणों की भी सेवा, परंतु जो आत्माएं गई हुई हैं उनके वापस आने का भी सेवा करने का चांस मिल गया। तो ड्रामा बहुत सुंदर कहेंगे। यहाँ की दादी रतन मोहिनी दादी जी का जो समाचार मुझे मिला वो सिंगापुर एयरपोर्ट पर मिला। तो हम शांति में बैठकर सोचा कि बाबा को याद करके अभी क्या करें, तो मुझे लगा कि दीदी मोहिनी यहाँ है, सब कुछ बहुत अच्छा ही चलेगा, और वहां पर फिर उन्हों को बहुत गैप लगेंगी, बहुत समय का पुरुषार्थ उनका चला था। वहां पर 200 को इकट्ठा करना सहज नहीं है और 2000 से अधिक फुल हाउस बन जाए वो तो बाबा की जादू का खेल था। और उनको बहुत बहुत स्पॉन्सरशिप, बहुत बहुत अच्छी तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से सहयोग मिलता रहा। तो बाबा सब कुछ अच्छा ही कराते हैं। और जिसके साथ ही फोन पर बातचीत चली डॉक्टर प्रताप के साथ, मृत्युंजय भाई के साथ, वो यही कहे कि हाँ तुम और आगे बढ़ो, यहाँ तो काम हो जाएगा। फिर पूछते थे कि तुम कब वापस लौटेंगे, तो मैंने बताया तो कहते थे हाँ फिर तो 13वां तारीख तक तुम पहुंच जाएंगे तो फिर तो बस ठीक है। तो सबके ब्लेसिंग से आगे बढ़ना हुआ। शशिबेन से भी मैंने, मैं समझती, मैं लिखा, उसका मैसेज तो बाद में मिला फिर, परंतु सबके साथ कॉन्टैक्ट बनता रहा। आजकल तो फ्लाइट में भी वाईफाई मिल जाती। बाबा का कार्य फास्ट चल रहा है। दीदी नीचे से अभी निकली होंगी जाने के लिए न्यूयॉर्क, और हमारा फिर 24 तारीख को यहाँ से निकलना होगा। और भगवान की कमाल है, होम मिनिस्टर भी आए, डिफेंस मिनिस्टर भी आए, फिर नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी आने वाला है। कौन कर रहा है ये कार्य? बाबा। सचमुच बाबा का जादू का खेल देखते चलो। साथ साथ कौन सी बात का इतला हो रहा? बाबा सेवा इतने फास्ट स्पीड से सब तरफ करा रहा, तो समय की चेतावनी भी हमें मिल रही। बाकी कितना समय होगा? बिल्कुल इतना समय। तो जो हर मुरली सुनते हैं उसमें आज भी बाबा कहते बिल्कुल मौत तो सामने खड़ा है। तो पहले भी ये मुरलियां सुनते थे, परंतु आज जो संसार की हालत है प्रैक्टिकल वही नजर आ रही है कि किस घड़ी भी कुछ भी हो सकता, प्रैक्टिकल। और बाबा का बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना कि बच्चे जल्दी बाप समान बने, वो भी बाबा जरूर पूरी करेंगे। ओम शांति। मधुबन वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने समय से सेवाएं की है, विदेशी भाई बहनों की, भारत के भाई बहनों की। और अभी तो आपका दूसरा टॉपिक चलेगा भट्टियों का, उसमें तो खुद को भी फायदा, औरों को भी फायदा। परंतु बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ओम शांति।
शांति। सभी जानते हैं आज शांतिवन में भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं। तो जो भी उस कार्यक्रम में जाना चाहते हैं कि उनको बता रहे हैं कि 11:30 बजे के पहले आपको हॉल के अंदर एंटर होना है, और 12:15 बजे शायद हॉल के दरवाजे भी बंद कर देंगे, क्योंकि 12:30 से 1:30 बजे तक उनका कार्यक्रम चलने वाला है। और एक मोबाइल किसी का गुम हुआ है हिस्ट्री हॉल में अमृत वेले, अगर किसी को मिले तो वो टेलीफोन एक्सचेंज में जमा करा दे। और आज हमने दीदी जी से सुना कैसे बाबा विशेष आत्माओं को निमित्त बना करके एकदम मिराकल की तरह सेवाएं करा रहे हैं, और दीदी जी ऑस्ट्रेलिया का टूर करके सेवाओं का इतना विशाल, अभी मधुबन पहुंचे और थोड़ा सा समय यहां बिता करके फिर लंदन जाने वाले हैं, और उसके बीच में आप समय चुरा करके हमारे लिए खास पांडव भवन में आए, इसलिए हम आपका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। एक हाथ की ताली से भी दीदी जी का अभिवादन हम करेंगे, क्योंकि ये दिखाता है कि पांडव भवन के क्लास से दीदी जी का विशेष प्यार है। ओम शांति। अभी बाबा की याद में बैठ के क्लास संपन्न।